भजन संहिता 135, भजन 135 उन भजनों में से है जो हालेलुया से आरंभ होता है और हालेलुया से ही समाप्त होता है। भजन 135 पद 1, या की स्तुति करो हालेलुया। भजन संहिता 135 पद 1 से लेकर 3 तक, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, या की स्तुति करो। परमेश्वर की बड़ाई करने के आग्रह पर जोर दिया गया और दोहराया गया है, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, या की स्तुति करो। अब भजनकार आपको बताने जा रहा है कि आपको उसकी बड़ाई क्यों करनी चाहिए। भजन 135 पद 3 में आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी कैसी प्रशंसा करनी चाहिए। भजन 135 पद 3 के अंत में लिखा है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि ये मन भाव है। और फिर से परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए, क्यों। भजन 135 पद 4, या ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इसराइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। हमें नए नियम में बताया गया है कि हम उसके अपने लोग हो गए हैं। हमने पहले देखा था कि आप लोग उसकी धरोहर है, आप वही लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी धरोहर होने के लिए चुन लिया है। इसराइल परमेश्वर की धरोहर और संपत्ति है, उसने इसराइल को अपने संपत्ति होने के लिए रखा है और उसने इस पर दावा किया, तुम मेरी धरोहर हो। परमेश्वर अपने लोगों के समान आपको भी चाहता है, जैसे इसराइल उसकी अपनी संपत्ति है या उसकी संपत्ति जिसे वो संभाल कर रखता है। भजन संहिता 135 पद 5, मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। बहुत से ईश्वर हैं जिनकी लोग उपासना करते और सेवा करते हैं, परंतु वे जीवित नहीं हैं, वे सच्चे नहीं हैं। एक ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और हमारा प्रभु सब प्रभुओं के ऊपर है, उसी ने मनुष्य को बनाया है। भजन संहिता 135 पद 6, जो कुछ यहोवा ने चाहा, उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। परमेश्वर की अपनी सुइच्छा है, जो कुछ उसे भला लगे, कौन उसे कह सकता है तूने ये क्यों किया। जो वो चाहता है करता है, मैं उसे चुनौती नहीं दे सकता, मुझमें शक्ति नहीं कि उसे रोक सकूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में जब प्राचीनों ने नीचे गिरकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने मुकुट उतार दिए, तब उन्होंने कहा, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11 पद, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिर्जी गई। आप पसंद करे या ना करे, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के लिए आपको बनाया है। उसने मुझे मेरे आनंद के लिए नहीं बनाया। यदि मैं अपना आनंद ढूंढता रहूं तो मेरा जीवन कभी पूर्ण ना होगा, वो खाली बेकार और निराशाजनक होगा। मैं तभी संतुष्ट होऊंगा जब मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। क्योंकि इसके लिए ही उसने मुझे बनाया है और मुझे इसलिए भी बनाया कि मैं अपने अस्तित्व में होने का अर्थ समझूं। मुझे परमेश्वर के आनंद के लिए यहां रहना चाहिए। उसने वही किया है जो उसे अच्छा लगा। भजन संहिता 135 पद 7। वो पृथ्वी के छोर से कुहरे उठाता है। परमेश्वर की बड़ाई करो क्योंकि जगत पर उसका अधिकार है। उसने जगत को सिरजा है। भजन 135 पद 7 से लेकर 10 तक। और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियां नाश की और सामर्थी राजाओं को। दूसरे शब्दों में इसराइल प्रभु की बड़ाई करे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया। उसने कनान देश में उनके हाथों में कर दिया। भजन संहिता 135 पद 11 से लेकर 14 तक। अर्थात एमोरियों के राजा सिहोन को और बाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके देश को बांटकर अपनी प्रजा इसराइल के भाग होने के लिए दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वो पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। इसकी तुलना में यहां परमेश्वर ने बहुत अद्भुत महान कार्य किए हैं। अपनी शक्ति दिखाई, अपना अधिकार और अपना प्रेम दिखाया। भजन संहिता 135 पद 15। अन्य जातियों की मूर्तें। वो सब ईश्वरों के ऊपर प्रभु है। अन्य जातियों के ईश्वर मूर्तियां जो उन्होंने बनाई है। भजन संहिता 135 पद 15 से लेकर 18 तक। सोना चांदी ही है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। ना उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। यही विचार हमें भजन संहिता 115 में दिया गया है, जहां वो ऐसी ही बात अन्य जातियों की मूर्तों के बारे में कहता है। वो दार्शनिक टिप्पणी करता है कि सबसे पहले मनुष्य अपने लिए ईश्वर बनाता है। सोने चांदी लकड़ी या पत्थर पर खोदकर जब मनुष्य अपने लिए ईश्वर बना लेता है तब वे उसी की तरह होते हैं। आंख कान नाक मुंह पैर आदि, क्योंकि उसके पास भी ये सब होता है। परंतु वास्तव में वो जो ईश्वर बनाता है अपने से कुछ कम ही बनाता है, क्योंकि वो आंखें बनाता है परंतु वो देख नहीं सकते। पैर बनाता है परंतु वे चल नहीं सकते। कान बनाता है परंतु वे सुन नहीं सकते। इसलिए मनुष्य जो ईश्वर बनाता है अपने से कम ही बनाता है। परंतु दर्शन शास्त्र का ये विचार है कि मनुष्य अपने ईश्वर की तरह हो जाता है। जिन्होंने उसको बनाया है वे अपने हाथों से बनाए हुए ईश्वर की तरह ही हो जाते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य अपने ईश्वर के समान हो जाता है। इसलिए यदि आपने अपना ईश्वर बनाया है तो वास्तव में वो आपसे भी कम है। आप अपने से निम्न किसी की आराधना करते हैं और फिर आप भी उसी के समान हो जाते हैं। इसलिए ये अपमानजनक होता है। ये व्यक्ति का अपने स्तर से नीचे गिरना होता है। ये आपने विचारों के ईश्वर की आराधना का अनुभव है, क्योंकि आपका ईश्वर बहुत छोटा है, वरन आपसे भी कम स्तर का है, और आप उसके समान हो जाते हैं। ऐसी अवस्था समाज और मनुष्य के लिए सदा पतन का मार्ग है कि हम सच्चे और जीवित परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और की आराधना करें। किसी और की आराधना करना पतन का मार्ग है। मनुष्य दूसरे ईश्वर की आराधना करके स्वयं को नीचे गिराता जा रहा है। भजन संहिता 115 पद 8। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। एक मनुष्य अपने ईश्वर की तरह हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि आपका ईश्वर कौन है। पहला योहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने ईश्वर के समान हो जाता है। ये एक आशीष है जो महान है। क्योंकि मैं सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। यदि मैं सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा हूं, तब मैं ये सोचकर भयभीत होता हूं कि मैं अपने ईश्वर की तरह हो जाऊंगा। मैंने देखा है कि लोग सुख विलास की उपासना करते हैं। वे वासना के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने ईश्वर की तरह काम वासना से ग्रस्त हो जाते हैं। मैंने देखा कि लोग अधिकार के लिए जीते हैं। उनकी इच्छाएं उन्हें बहा ले जाती हैं। वे दूसरों को नष्ट करते हुए ऊपर चढ़ते हैं, दूसरों का शोषण करते और उन पर चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, दूसरों का अनादर करते हैं और अपने ईश्वर के समान हो जाते हैं। कितने दुख की बात है। 2 कुरिन्थियों 3:18। परंतु हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मनुष्य अपने ईश्वर की तरह हो जाता है। ये अवश्य ही उसके जीवन की प्राथमिकता और आवश्यकता दिखता है कि हम सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करें। भजन संहिता 135 पद 19-20। हे इसराइल के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे यहोवा के डरवयों, यहोवा को धन्य कहो। हम सबको भी ऐसा करना चाहिए। भजन 135 पद 21। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है, उसे सियोन में धन्य कहा जावे, या की स्तुति करो। भजन श्रृंखला हालेलुया से आरंभ हुई थी और समाप्त भी हालेलुया से होती है। ये शब्द स्तुति के संबोधन का सर्वप्रिय शब्द है।